Sabiko Maitri Purna Namo Buddhaya. Jai Bhim! So you all ready?
आप लोग तैयार हैं?
What's this? But why?
What did he say?
Whiteboard. Anyway, we'll find out later what this is.
तो बाद में हम खोजेंगे कि ये क्या है.
But you know that last night we burnt the Manusmriti.
लेकिन कल रात को हमने मनुस्मृति को जलाया.
And in burning the Manusmriti, we were remembering a very, very important incident in बाबा साहेब's life and career.
तो बाबा साहब के पूरे जीवन और उनके कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को हमने कल याद किया.
He rejected completely the sacred system on which India had worked for 3,000 years.
तो उन्होंने पूरी तरह जिसे तथाकथित जो पवित्र व्यवस्था थी उसको उन्होंने धुतकार दिया.
That system of graded inequality, caste, and of course gender oppression.
हजारों साल से जो व्यवस्था जो चलते आ रही थी असमानता की, ऊंच नीच की, जाति के आधार पर और स्त्री या लिंग के आधार पर.
And we must remember that Baba Saheb fought both these.
और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दोनों बातों को याद रखें कि इन दोनों के लिए बाबा साहब ने संघर्ष किया.
So when he burnt Manusmriti, it was a big step forward for India.
तो जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया यह उसके लिए बहुत भारी कदम था.
The system that had dominated Indian social life for thousands of years, he completely rejected.
हजारों साल से जो उत्पीड़ित व्यवस्था थी भारत के लिए उन सब को खात्मा करने के लिए बाबा साहब ने वह कदम उठाया.
So that was in 1927.
हाँ, वह 1927 की बात थी.
But he took another step in 1936, the Yalu Conference. When was that?
35.
1935. He took another big step.
तो 1935 में उससे भी एक बड़ा कदम बाबा साहब ने उठाया.
At a big conference of scheduled castes, he made a very important statement.
अनुसूचित जाति और जमातियों के लिए एक बहुत बड़ी परिषद में उन्होंने एक बहुत महान वाक्य कहा.
He said, "I was born a Hindu."
उन्होंने कहा कि मैं हिंदू करके पैदा हुआ हूँ.
That wasn't my choice.
लेकिन यह मेरी इच्छा नहीं थी या मेरे हाथ में नहीं था.
Nobody said to him, "Well, now you've come into this life. Do you want to be a Hindu or do you want to be a Muslim or a Christian? What do you want to be?" No, they didn't say that.
किसी ने भी उनको यह नहीं पूछा जब उन्होंने जन्म लिया कि क्या आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं, बौद्ध बनना चाहते हैं.
He was just born a Hindu.
क्योंकि वे केवल हिंदू करके ही पैदा हुए.
Just as I was born a Christian.
जैसे कि मैं पैदाइशी ईसाई हूँ वैसे वे पैदाइशी हिंदू थे.
क्रिश्चियन मुझे हिंदी नहीं है. I'm a Mlecha. nobody asked me, "Do you want to be a Christian?"
तो किसी ने मुझे पूछा नहीं कि क्या आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं.
So anyway, yes, Baba said it wasn't my choice.
तो बाबा साहब ने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं था.
But he said, "I will not die a Hindu."
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं.
That is my choice.
यह मेरे हाथ में है.
So Baba Saheb then took another big step on his journey.
तो अपने यात्रा में या अपने संघर्ष के प्रवास में बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया.
At Mahad, in the burning of the Manusmriti, he rejected the social system.
मनुस्मृति को महाड़ में जला के उन्होंने जो ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था थी उसको उन्होंने नकारा.
But at Yola, he rejected the philosophy, the religion in which that social system was embedded.
लेकिन योला में उन्होंने जो व्यवस्था ऐसे धर्म में बसी हुई है या जिसके कारण यह व्यवस्था है, जिस धर्म के कारण, उसको उन्होंने नकारा.
He said, "You can't take that social system out of Hinduism and have something left."
तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उस व्यवस्था को बाहर निकाले और धर्म को जिंदा रखे तो यह दोनों भी अलग बातें नहीं है.
They're completely identified.
क्योंकि वह बिल्कुल एक दूसरे से एक रूप है या समरूप है.
Hinduism, caste system, they're all bound up together.
तो जो हिंदू व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, यह एक दूसरे से जुड़ी हुई है.
The inferiority of women and caste and Hinduism are completely bound up together.
तो यह जो अपने आप में कम समझने वाली भावना जो महिलाओं में होती है या उच्च निष्ठा की जो व्यवस्था है, यह हिंदू धर्म से भिन्न नहीं है.
If you take the oppression of women, you take caste out of Hinduism, there's nothing left.
तो अगर आप उत्पीड़न हिंदू धर्म से बाहर निकालते हैं या जाति हिंदू धर्म से बाहर निकालते हैं तो वहां कुछ नहीं बचता.
It's a bit like trying to take Jesus Christ out of Christianity.
इस तरीके का हुआ कि जैसे हम जीसस क्राइस्ट को ईसाई धर्म से बाहर निकाले.
Or taking God out of Allah, out of Islam.
ये उस तरीके से हो जाएगा जैसे हम अल्लाह को इस्लाम धर्म से बाहर निकाल रहे हैं.
You're not left with anything.
क्योंकि फिर वहां कुछ भी नहीं बचेगा.
So Obama said we have to go further than rejecting the social system.
तो बाबा साहब ने कहा नकारने के साथ साथ हमें उसके साथ आगे भी बढ़ना है.
It's not enough just to change the computer program.
यह पर्याप्त नहीं है कि केवल आप किसी कंप्यूटर का प्रोग्राम बदल दें.
You have to change the operating system.
क्योंकि उत्पीड़न की जो व्यवस्था है उसको ही बदलना पड़ेगा.
So, Baba Sahib said, "This operating system was on my computer when I was born."
तो जब मेरा जन्म हुआ, तो यह जो operating system था, जो चलाता है कंप्यूटर को, वो मेरे पैदाइश ही था.
But I'm going to wipe it off.
लेकिन मैं इसको पूरी तरह हटा दूंगा.
But you know, a computer can't work without an operating system.
लेकिन आपको पता है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा.
You can't run any programs if you don't have an operating system.
अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कोई भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर पे चला नहीं सकते.
You know what happens? You turn the computer on.
क्या होता है अगर हम किसी भी संगणक को या कंप्यूटर को चालू करते हैं?
It starts to boot up.
यह धीरे धीरे शुरू होता है.
And nothing happens.
और फिर कुछ नहीं होता.
I had this happen to me recently. I had my computer with me and it got banged.
तो मेरे पास जो कंप्यूटर था ऐसे ही शुरू हो रहा था और बंद हो जाता था.
And when I turned it on, yes, all the lights come on, but nothing happens.
तो सब लाइट शुरू हो जाते थे लेकिन कुछ नहीं दिखता था.
So we have to have an operating system.
तो हमारे पास वह ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है.
We need a philosophy of life.
हमें जीवन का दर्शन चाहिए.
We need a way of understanding life.
और हमें जरिए चाहिए उस जीवन को समझने के लिए.
Otherwise, nothing works.
नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा.
So Baba Sahib said, "Yes, I'm getting rid of that old Hindu philosophy."
तो बाबा साहब ने कहा कि यह जो पुरानी हिंदू धर्म की धारणा है उससे मैं मुक्त हो रहा हूँ.
But we must find a new philosophy.
लेकिन हमें नया दर्शन भी चाहिए.
We must find a new operating system.
हमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए.
So, well, we know that in 1955, on the 25th of December, he placed that Buddha Murti in the temple at Dehu Road.
तो 1927 में 25 दिसंबर को देहू रोड में उस मंदिर में बाबा साहब ने बुद्ध मूर्ति रखी.
And that was really the first major indication of the direction he was going.
और यह सबसे पहली पहचान या लक्षण था जिस दिशा से बाबा साहब पहल करना चाहते हैं.
We know he'd been thinking deeply about the Dhamma for many, many years.
हम सब लोग जानते हैं कि बहुत गहराई से सारा जीवन बाबा साहब धम्म को सोच रहे थे.
But in placing that murti in the temple, it was a big step.
लेकिन उस मूर्ति को उस मंदिर में, बुद्ध मूर्ति को उस मंदिर में रखना यह बहुत बड़ा कदम था.
You could say he loaded the operating system.
ऐसा हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं वैसा उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया.
Then on the 14th of October, 1956, he booted it up.
और 1956, 14 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में उन्होंने कंप्यूटर को ऑन किया. उसको शुरू किया.
ऑन किया. बूटेड. So you get this very important journey.
तो यह बहुत महत्वपूर्ण जो संघर्ष यात्रा वो थी.
From Mahad to Yola.
महार से यौला तक की,
from Yeola to Dehu Road,
और यौला से फिर देहु रोड,
and from Dehu Road to the Diksha Bhumi at Nagpur,
और फिर देहु रोड से दीक्षा भूमि नागपुर की ओर.
So this very important journey is one that we are still following from.
तो यही एक महत्वपूर्ण यात्रा या प्रवास है जो हम सब लोग अभी कर रहे हैं.
The journey that each of us is taking goes on from Nagpur.
तो हमारी जो यात्रा जो शुरू होती अभी वह नागपुर से शुरू होती है.
But one thing that's very very interesting, very important for us to understand is what happened between Yeola and Dehu.
तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यौला और देहु के बीच का जो अंतर था उस बीच क्या हुआ.
Why did Baba Sahib put a Buddha murti in Yeola?
क्यों इन देहु रोड?
In Dehu Road, yeah.
क्यों बाबा साहब ने बुद्ध मूर्ति को देहु रोड में रखा?
He could have chosen any other operating system.
अब कोई भी दूसरी मूर्ति या ऑपरेटिंग सिस्टम वह चुन सकते थे.
But, and he was offered a lot of money, we know, to take maybe Islam, maybe Sikhism.
और हम सबको पता है कि बहुत सारा धन या पैसा बाबा साहब को यानी दिखाया गया इस्लाम या अन्य धर्मों के लिए.
If he'd chosen Christianity, so much money would have come from the West.
अगर उन्होंने ईसाई धर्म को ले लिया होता तो बहुत सारा पैसा समाज में आ सकता था.
He could have chosen, well, some other form of Hinduism.
या और किसी प्रकार का हिंदू धर्म वह स्वीकार सकते थे.
But no, he chose the Buddha Dhamma.
लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ही चुना.
Well, you know, Baba Sahib was not a stupid man at all.
अब हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अज्ञानी व्यक्ति नहीं थे.
That's what we call in English understatement.
उसको कमजोर समझना होगा.
In England, we like to use a lot of understatement.
और हम बहुत लोगों को ऐसा कमजोर समझते या अज्ञानी समझते हैं.
Maybe that it's very very hot.
Very very hot.
The day is very hot.
हाँ, मान लीजिए कि दिन बहुत गर्मी का है.
So you say, oh, it's quite warm today.
तो हम कहते हैं यार आज बहुत गर्मी है.
Or you're practically freezing to death and you say, a little cool.
तो आप जैसे मरने लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सर्दी है.
So I say that Baba Sahib was not a stupid man.
तो हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अज्ञानी नहीं थे.
What I mean is he was a very very intelligent, very clever man.
मैं क्या कहूंगा कि बाबा साहब बेहद बुद्धिमानी और प्रज्ञावान थे.
What he did from very careful thought.
जो कुछ भी उन्होंने किया वह गंभीरता और विचार पूर्वक किया.
And Baba Sahib had thought very deeply about which religion to go to.
और बाबा साहब ने बहुत गहराई से धर्मों के बारे में सोचा कि किस धर्म में वह जाना चाहते हैं.
You know how much Baba Sahib studied.
आप सबको पता है कि कितना बाबा साहब ने अभ्यास किया है, पढ़ाई की है.
You know that always he was reading.
आप सब लोग जानते हैं कि वे हमेशा पढ़ते रहते थे.
And he read widely in world religion.
और सभी दुनिया के धर्मों का बहुत ही विशाल अभ्यास उन्होंने किया.
All the time thinking, what is the right religion for me? What is the right religion for my people?
हमेशा ही उन्होंने यह सोचा कि मेरे लिए सही धर्म कौन सा है, मेरे लोगों के लिए सही धर्म कौन सा है.
What is the right religion for India?
भारत के लिए सबसे अच्छा या सर्वोत्तम धर्म कौन सा होगा?
He wasn't only thinking of his own people.
केवल वह अपने आप के लिए या अपने लोगों के लिए नहीं सोच रहे थे.
He was thinking of the whole of India.
उन्होंने समूचे भारत के बारे में सोचा.
Actually, he was thinking of the whole world.
सही मायने में देखा जाए तो वह सारे दुनिया के बारे में सोच रहे थे.
What is the right religion for the world today?
कौन सा सही धर्म होगा दुनिया के लिए आज के युग में?
So if you ask a question like that, you've got to have criteria.
अगर आप जब ऐसे सवालों को पूछते हैं तो आपके पास कोई पद्धति होनी चाहिए उसको सोचने के लिए.
If you want to know what the best computer is to do your job, well, you need to know what your job is and what specification you have.
अगर आपको किसी कंप्यूटर के बारे में अगर काम करना है तो आपको सबसे पहले यह बात तय करनी होती है कि कौन से काम मुझे करने हैं और फिर उसके लिए कौन सा तकनीक या मेरे लिए सही है.
I think there are many engineers here, so you'll know what I'm talking about.
तो बहुत लोग आप में से इंजीनियर है तो आपको पता है कि यह कैसे काम होता है.
So you need a specification.
तो आपको इस तरीके की बारकाइयां उसकी जाननी होती है.
So Baba Sahib had a specification for a religion.
तो बाबा साहब की अपनी पद्धतियां थी धर्म को जानने के लिए.
First specification, the new religion should support liberty, equality and fraternity.
उसका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि यह जो नया धर्म होगा इसने समता, स्वतंत्रता और बंधुता को बढ़ोतरी देनी चाहिए.
So we shouldn't accept any religion that preaches inequality.
ऐसा कोई भी धर्म हम स्वीकारेंगे नहीं जिसमें असमानता हो.
We shouldn't accept any religion that leaves human beings in slavery.
ऐसा कोई भी धर्म हम नहीं स्वीकारेंगे जिससे या जिसकी जिसमें गुलामी की मान्यताएं हो.
Many years ago in Europe, Christianity used to teach that people with black skin were not really human.
ऐसी मान्यताएं थी. They were believing in Christianity.
In Christianity, they taught that they didn't have souls.
तो क्रिश्चियन धर्म में यह मान्यताएं थी पाश्चात्य देशों में कि जो लोग काले होते हैं उनमें those people are black,
they don't have souls. They're not human beings. Yeah.
वो इंसान ही नहीं है और उन लोगों में आत्मा नहीं होती.
So it's all right to make them slaves.
तो यह बिल्कुल सही है कि हम उनको गुलाम बनाएं.
Of course, Christians don't say that now.
अब निश्चित रूप से आज के जो ईसाई है यह ऐसी बात नहीं करते.
But Baba Sahib said, any religion that teaches like that, we shouldn't take.
तो बाबा साहब ने यही सोचा कि कोई भी धर्म इस प्रकार की अगर शिक्षाएं देता है उसको हम नहीं स्वीकारेंगे.
We shouldn't take a religion that teaches these are friends, these are enemies.
ऐसे किसी धर्म को हम नहीं स्वीकारेंगे जो हमें यह बताता है कि यह हमारे मित्र है और यह हमारे शत्रु है.
We shouldn't talk in terms of अपने लोग and अपने लोग नहीं. हमरे लोग और हमरे लोग नहीं. What we should accept a religion that says सर्व लोग अपने लोग है. Fraternity, बंधुत्व.
Fraternity, बंधुत्व.
No, you say बंधुत्व, fraternity. So Baba Sahib said this is the first and major criterion.
तो बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहला हमारी बुनियाद यह होनी चाहिए, यह पद्धति होनी चाहिए.
We should accept a religion that makes us free.
ऐसा धर्म हमने चुनना चाहिए जो हमें मुक्त करता है.
We should accept a religion only that makes us sees us as equal as human beings.
ऐसा हमने धर्म चुनना चाहिए जो हमें समानता सिखाता है.
We should only accept a religion that preaches brotherhood, sisterhood.
ऐसा हमने धर्म स्वीकारना चाहिए जो हमें बहन भाईचारा सिखाता है.
So, yes, Baba Sahib, this was his first specification.
तो बाबा साहब की सबसे पहली बुनियादी पद्धति यह थी.
Then he said we shouldn't accept a religion that ennobles or justifies poverty.
और दूसरी बात या मुद्दा उसमें यह था कि ऐसा कोई भी धर्म हमने नहीं स्वीकारना चाहिए जो गरीबी को बढ़ावा दे.
Under the Manusmriti, people from the lower caste, so called, were not supposed to have possessions.
तो मनुस्मृति के नियमों को अगर हम देखते हैं तो उसके तहत जो लोग निचले जाति के हैं उनको किसी भी संपत्ति के ऊपर दावा करने का हक नहीं है.
Women could not inherit property.
इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी भी पद्धति से किसी संपत्ति को नहीं स्वीकार सकते.
This is why Baba Sahib introduced the Hindu Code Bill to try to change Hindu custom.
यही कारण था कि हिंदू पद्धतियों को बाबा साहब बदलना चाहते थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल सादर किया था.
When the Constituent Assembly wouldn't accept that bill, Baba Sahib said, "I don't want anything more to do with government."
जब उस समिति ने इस बिल को नकारा तब बाबा साहब ने कहा मेरा अभी सरकार के साथ ताल्लुकात क्या है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता.
So in a way that Manusmriti is justifying poverty.
तो इस दृष्टिकोण से अगर हम सोचते हैं तो मनुस्मृति गरीबी को बढ़ावा देता है.
It's saying you're poor because of your karma.
आप गरीब है क्योंकि आपने ऐसे कर्म किए हैं.
Because of the bad deeds you've done in the past, you're born into that low community.
आपने ऐसे बुरे कर्म किए हैं इसलिए आप इस निचली जाति में पैदा हुए हैं.
It's right that you're poor.
यह बिल्कुल पर्याप्त है या सही है कि आप गरीब हों।
If you're born a woman, it's right that you have no property.
अगर आप महिला करके स्त्री करके पैदा हुए हैं तो आपको गरीब होना मुलाजिम है, सही है।
So Baba Sahib said we shouldn't accept a religion like that.
और बाबा साहब ने कहा कि ऐसे किसी धर्म को हम स्वीकारेंगे नहीं।
I remember when I was a child, we used to sing one hymn.
जब छोटे थे तब हम एक गाना गाते थे।
The hymn went like this: The rich man in his castle, the poor man at his gate. He made them high and lowly, and ordered their estate.
तो गाने का सारांश यही है कि जो अमीर आदमी है वो सही है अपनी जगह, और गरीब आदमी को अपने गेट पर खड़ा होकर कटोरा रह के अगर वो खड़ा रहता है तो वह भी सही है।
लेकिन ताल कहाँ है, राग कहाँ है?
लेकिन उसमें कोई ताल नहीं है, उसमें कोई राग नहीं है।
So yes, even in my childhood, we were taught that people were rich or poor because God made them like that.
तो मेरे भी बचपने में हमें यही सिखाया गया कि अगर कोई अमीर है या गरीब है क्योंकि भगवान ने या ईश्वर ने उनको वैसे बनाया है।
Well, Baba Sahib said we shouldn't accept a religion like that.
और बाबा साहब ने कहा कि ऐसे धर्म को हमने कभी स्वीकारना नहीं चाहिए।
Poverty, wealth, they're often just to do with the social circumstances.
क्योंकि जो अमीरी और गरीबी है यह हमारी सामाजिक व्यवस्था की ही उपज है।
You're born into wealth or poverty, yeah.
क्योंकि हम पैदा होते हैं अमीरी में या गरीबी में।
It's not your fault.
यह आपकी गलती नहीं है।
So Baba Sahib said we should reject any religion that teaches and justifies poverty.
तो बाबा साहब ने ऐसा कहा कि ऐसे धर्म को हमने पूरी तरह नकारना चाहिए जो किसी भी पद्धति से अमीर या गरीब किसी को बनाता है।
But he had a third criterion, which is very, very interesting.
लेकिन तीसरा उनकी पद्धति थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी।
He said we shouldn't accept a religion which is against science.
उन्होंने कहा कि हमने उस धर्म को नहीं चुनना चाहिए जो विज्ञान से प्रतिकूल है।
We shouldn't accept a religion which is contrary to the findings of science.
जो विज्ञान की हासिलियत है, उपलब्धियां है, उसके साथ वह विरोधाभास में जाए, ऐसे धर्म को हमने नहीं चुनना चाहिए।
So for instance, it's known now, we know, I think, for certainty, virtually certainty, that there's been a slow evolution on this planet.
हम सब लोग पर्याप्त मात्रा में, मैं कहूंगा अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म ऐसी उत्क्रांति हुई है इस पृथ्वी पर।
We're going to say much more about that later.
इसके बारे में मैं और ज्यादा कहूंगा बाद में।
But the basic teachings of Christianity say that God made the world.
इसके बारे में मैं बाद में और कहूंगा, लेकिन क्रिश्चियन धर्म की मूलभूत मान्यता यह है कि ईश्वर ने विश्व की निर्मिति की है।
It took him 6 days to create the world.
उनको 6 दिन लगे यह दुनिया बनाने में।
On the 7th day, he rested.
और 7वें दिन उन्होंने आराम फरमाया।
That was Sunday. Even God had Sunday off.
तो वो रविवार या इतवार था जब ईश्वर जी ने आराम किया।
Actually, that is why Sunday is still a holiday. It's a Christian tradition. Yes.
क्योंकि वह ईसाई परंपरा है इतवार को या रविवार को छुट्टी होना।
Many Christians all over the world still believe that God literally made the world.
अभी तक दुनिया के बहुत सारे ईसाई लोग यह मानते हैं कि 6 दिन में ईश्वर ने इस विश्व की निर्मिति की।
I read the other day that something like 40% of people in America believe that God made the world.
40% लोग आज भी अमेरिका में यह मानते हैं कि ईश्वर ने विश्व की निर्मिति की है।
In America, which is the richest and most powerful country on this planet,
अब अमेरिका जो है इस पृथ्वी पर या हमारे धरती पर सबसे अमीर देश है।
People still believe something that modern science proves to be incorrect.
लोग आज भी ऐसा सोचते हैं कि आधुनिक विज्ञान जो हासिल कर रहा है वो गलत हो सकता है।
They have their own ways of thinking about it, but Baba Sahib said we shouldn't accept a religion that teaches like that.
उनके अपने तरीके हैं इस हासिलियत को मानने या न मानने के लिए, लेकिन बाबा साहब ने यह साफ किया कि विज्ञान के विरोधाभास में जाने वाला धर्म नहीं होना चाहिए।
You remember that quite recently the Indian and Sri Lankan governments were going to dredge out the channel between the two countries.
अभी भी भारत और श्रीलंका के बीच एक कैनल जो है या जो सेतु ब्रिज पुल बनाना चाहते
एंड दैट वाज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज़ शिप्स कुड सेल मच मोर क्विकली राउंड
क्योंकि उससे बहुत सारा पैसा हमारा बचेगा क्योंकि जो जहाज है वो तुरंत वहां से जा पाएगा
बट इट वाजंट एक्सेप्टेड इमीडिएटली
लेकिन यह तुरंत इसकी स्वीकृति नहीं मिली
व्हाई नॉट
क्यों नहीं
राम शेट्टी Ram Setu.
Setu.
Ram Setu.
Ram Setu ke karan.
Because under the water, there's the bridge that, who made it? Maruti, you said?
Yeah.
Maruti made it.
Hanuman.
Yeah.
To, kyunki wo pani ke niche, aisa koi pul tha, jisko kisi ne banaya tha.
There's nothing there.
Wahan kuch nahi hai.
But people believe there is because it says so in Mahabharata.
क्योंकि लोग इस पे विश्वास करते हैं क्योंकि महाभारत में ऐसा कहा गया है
सो बाबा साहब सेड वी शुड
रामायण में
रामायण सॉरी आई कैन टेल यू अबाउट क्रिश्चियनिटी आई कांट से एनीथिंग अबाउट हिंदुइज्म सो यस बाबा साहब सेड वी शुडंट एक्सेप्ट अ रिलीजन दैट टीचेस इन दैट वे
तो हमने ऐसे किसी धर्म को नहीं स्वीकारना चाहिए जो ऐसी शिक्षाएं हमें देता है
इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइंडिंग्स ऑफ मॉडर्न साइंस एंड रिलीजन वेल वी शुड फॉलो साइंस
अगर ऐसी विरोधाभास विज्ञान में और हासिलियत में है तो हमने विज्ञान को प्राधान्य देना चाहिए
सो यस देयर शुडंट बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइंडिंग्स ऑफ साइंस द प्रॉपर फाइंडिंग्स ऑफ साइंस एंड रिलीजन
तो उसमें कोई भी झगड़ा या वाद नहीं होना चाहिए विज्ञान की हासिलियत में और धर्म की उपलब्धियों में
रिलीजन शुड बी रीजनेबल
क्योंकि धर्म जो है वह सकारण होना चाहिए
वी शुड बी एबल टू थिंक अबाउट इट
उसके बारे में हमने यानी हम सोच सकते हैं
यू शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस
हम उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं
यू शुड बी एबल टू से वेल दैट डजंट ऐड अप
डजंट
ऐड अप Two and two.
ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें ऐसी हासिलियत हो जिसमें हम समझ ना पाए
you say two and two equals five.
ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो और दो पांच हो
But no, two and two makes four.
लेकिन
that's correct. Yeah, mathematician. Yeah.
लेकिन दो और दो चार होते हैं
So, well, if religion says, God says two and two makes five, reject it.
लेकिन धर्म आपको यह सिखाता है कि ईश्वर यह बताता है कि दो और दो पांच होते हैं तो आप इसको नकारिए
I remember when I was a child, I was told that God is omnipotent, he's all powerful.
हमें यही सिखाया गया कि जो ईश्वर जो है वो सार्वभौम है सबसे शक्तिमान है
God can do anything.
वो कुछ भी कर सकता है
So I found a question coming in my mind.
तो मेरे जहन में यह सवाल आया
What about parallel lines?
मैंने सोचा कि दो समांतर रेखाएं उसके बारे में क्या?
Can God make parallel lines meet?
क्या यह दो रेखाएं अपने आप में मिल सकती है?
So we should be able to question in that way.
तो इस तरीके के सवाल करने की क्षमता है हम में होनी चाहिए.
It should be possible to have reasonable answers.
और इसके पास यानी उस धर्म के पास इसके उपलब्ध जवाब भी होने चाहिए
Those answers may not always be easy to understand.
अब ऐसे जवाबों को कभी कभी हम समझने में या हमारी समझ के लिए वे कठिन हो सकते हैं
I remember again being told that, well, don't ask about that.
और हमें यह बताया गया है कि उसके बारे में आप मत पूछिए
That is a mystery.
क्योंकि यह रहस्य है
You can't understand.
अब आप ये समझ नहीं पाएंगे
So, well, that attitude, Baba Sahib said we shouldn't accept.
तो यह नजरिया जो है हमने इसको स्वीकारना नहीं चाहिए.
So Baba Sahib said that religion and science should not be in conflict.
तो बाबा साहब ने यह कहा कि धर्म और विज्ञान इनमें वाद विवाद नहीं चाहिए.
In other words, the scientific method should not be in conflict with religion.
तो जो वैज्ञानिक पद्धति है या धर्म के साथ विरोधाभास में नहीं चाहिए.
Well, you know what the scientific method is, broadly speaking.
तो अब मोटे मोटे तौर पर आप सब लोगों को वैज्ञानिक पद्धति क्या है यह पता होगा.
You observe what's happening.
आप देखते हैं कि क्या हो रहा है.
And you arrive at theories about why it's happening.
और आप इसके बारे में खोजते हैं कि यह क्यों हो रहा है.
Then you test those theories in experiment.
और वो जो भी तत्व आपने सोचा है या खोजा है उसको आप प्रात्यक्षिक प्रैक्टिकल करके देखते हैं.
And if those experiments don't disprove your theory, well, your theory stands.
तो अगर आपकी जो हासिलियत है या जो खोज है वह प्रात्यक्षिक अगर उसको प्रूफ करता है तो फिर आप सोचते हैं कि मेरा तत्व सही है.
यू नो अबाउट आइजक न्यूटन.
न्यूटन के बारे में आपको पता है.
यू नो दैट वन डे ही वाज स्लीपिंग अंडर एन एप्पल ट्री. दिस इज द स्टोरी.
अब ऐसी कहानी है कि न्यूटन जो है वो सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे.
आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग अंडर द एप्पल ट्री, जस्ट स्लीपिंग.
शायद ऐसे सो रहे हो न्यूटन.
एंड देन एन एप्पल फेल ऑन हिज हेड.
तो जो सेब जो है उनके सर पर आकर गिरा.
सो ही स्टार्टेड आस्किंग व्हाई.
तो उनको यह सवाल आया कि ऐसा क्यों हुआ.
व्हाई डिड दैट एप्पल फॉल.
क्यों यह जो सेब है यह मेरे सर पे गिरा.
एंड ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन.
और उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसको खोजा.
एंड ही वाज एबल टू डेमोंस्ट्रेट द मैथमेटिक्स बिहाइंड ग्रेविटी.
और इसके पीछे का जो गणित है उस गणित को भी वह बता पाए.
एंड देन फर्दर ऑब्जर्वेशन प्रूव्ड हिज थ्योरी.
और उसके आगे के जो निरीक्षण थे उस निरीक्षण ने यह साबित किया.
So, well, very broadly, very simply, that is what science is.
तो बहुत ही मोटे मोटे तौर पर हमें हम इसे विज्ञान कहते हैं.
Observation, theory, experimental proof.
निरीक्षण, प्रत्यक्षिक, वह उसको साबित करना चाहिए.
And of course, even scientific theory is always developing as there's new observation. A new proof.
तो यह जो वैज्ञानिक पद्धतियां है यह नई चीजों की खोज करती है और नए हासिलियत को पाती है.
So in many many religions, science and religion are in conflict.
तो बहुत सारे धर्मों में विज्ञान और धर्म जो है इनमें वाद विवाद है.
Is the Ram Shetty Setu?
Setu.
Ram Shetu Setu Shetu.
Tu.
Tu. Shetu.
Long O. Long U rather.
Or is there just some sand?
तो क्या वहाँ सही में राम सेतु है या केवल रेत है?
Is there? Did God create the world, or were the dinosaurs on this planet?
तो क्या ईश्वर ने इस विश्व की निर्मिति की या इसमें डायनासोर थे?
And there's a lot of discussion in religion about this.
और बहुत सारा चर्चा है ऐसी हो रही है धर्म में विज्ञान के बारे में.
So yes, we need to reconcile the two. We need to see them as part of the same understanding.
तो इसकी एक ही समझ होनी चाहिए. इसका हमने प्रयास करना चाहिए.
So Baba Sahib said that Buddhism is not in conflict with modern science.
तो बाबा साहब यह कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है आधुनिक विज्ञान से विरोध में नहीं है या वाद में नहीं है.
The Buddha Dhamma is a reasonable religion.
क्योंकि बौद्ध धर्म जो है यह सकारण सविज्ञान धर्म है.
The Buddha Dhamma encourages you to think.
बौद्ध धर्म आपको सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है.
In a way, if you don't think, you can't really be a Buddhist.
अगर आप सोचते नहीं हैं, तो फिर आप बौद्ध नहीं हो सकते.
Buddhism is not in conflict with liberty, equality, and fraternity.
और बौद्ध धर्म जो है, यह समता, स्वतंत्रता और बंधुता के वाद-विवाद में नहीं है.
In fact, Buddhism supports liberty, equality, and fraternity.
एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बौद्ध धर्म समता, स्वतंत्रता, बंधुता को बढ़ावा देता है.
You could even say that Buddhism, in a sense, is liberty, equality, and fraternity.
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ही समता, स्वतंत्रता और बंधुता है.
Baba Sahib said, I learnt liberty, equality, and fraternity not from the French Revolution, but from my master, the Buddha.
बाबा साहब कहते हैं कि मैंने समता स्वतंत्रता और बंधुता फ्रेंच की राज्य क्रांति से नहीं सीखी है लेकिन मैंने इसे मेरे गुरु बुद्ध से सीखी है.
You know, liberty, equality, fraternity, liberté, égalité, fraternité was the slogan of the French Revolution in 1789.
तो समता स्वतंत्रता बंधुता जो फ्रेंच में सुबुति ने कहा वह 1789 में इसका यह स्लोगन था ब्रीदवाक्य था.
And even today you'll see over government buildings in France liberté, égalité, fraternité.
और बहुत सारे जो सरकारी इमारतें हैं फ्रांस में उसमें यह लिखा है आज भी.
It's written on the coinage, I think. Liberty, yeah.
Coinage में यह लिखा है.
Sam knows all about it. He spent 1 year in Paris studying.
हमारे श्याम जो है उन्होंने एक साल पेरिस में बिताया है फ्रांस में तो उनको पता है.
So, yeah, but Baba Sahib said that's not where I got it from.
तो बाबा साहब ने यह कहा कि वहाँ से मैंने इसे नहीं लिया है.
I learnt it from the Buddha.
मैंने यह बुद्ध से सीखा है.
So yes, Baba Sahib found that Buddhism met his specification.
तो बाबा साहब ने यह खोजा कि इन सब पद्धतियों को बौद्ध धर्म मान्यताएं देता है.
And especially he was as an additional factor, it was an Indian religion.
अब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें और एक अच्छा मुद्दा था कि यह भारतीय धर्म है.
In fact, it's the religion that's behind most of what is best in India.
दूसरे शब्दों में या तथ्य बात यह है कि हर धर्म में जो कुछ भी है उसके पीछे बौद्ध धर्म है.
Not just in Dhamma, but most in all custom and society, yeah.
Buddhism is there.
Buddhism is behind the best in Indian society and culture.
तो भारतीय बौद्ध समाज और संस्कृति में जो भी अच्छा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म है.
You know what happens anywhere you dig beneath the surface of India?
क्या होता है जब आप किसी भी जमीन को भारत में उत्खनन करते हैं?
What do you find? You find stupas.
क्या आपको मिलता है? आपको स्तूप मिलते हैं.
Almost everywhere you can just dig and there they are.
बस आप उसको उत्खनन कीजिए उसका और आपको वो मिलेंगे.
They say this about the Babri Masjid, don't they?
और यह वो बाबरी मस्जिद के बारे में भी कहते हैं ऐसा मैंने सुना है.
Under the Babri Masjid was the Ram
मंदिर.
मंदिर, हाँ.
तो बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था.
I've heard, I don't know how reliably, that under the Ram Mandir is Ashoka Stupa.
और ऐसा मैंने सुना है. अब यह कितना सच है पता नहीं. उसके नीचे अशोक का स्तूप है.
We don't mind. Let them have.
अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.
We're not going to create trouble in that way.
हम उस तरीके से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते या समस्याएं खड़ी नहीं करते.
We will fill India with stupas in the future.
आने वाले भविष्य में हम भारत में पूरे स्तूप भर देंगे.
We don't need to disrupt anybody else's life.
अब किसी के जीवन को तकलीफ देने की हमें आवश्यकता नहीं.
So yes, Baba Sahib said this is the best in India.
तो बाबा साहब ने यह देखा कि भारत की सर्वोत्तम देन यह है.
This is why he chose the Buddha Dhamma, why he put the Buddha Murti at Dehu Road.
यह कारण है कि क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को चुना और देहु रोड में उन्होंने क्यों मूर्ति को रखा.
This is why he took Diksha at the Diksha Bhumi.
और यही कारण है कि क्यों बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली.
And this is why he wants you to be Buddhists.
और यही कारण है कि आप लोगों को वह ऐसा बौद्ध बनाना चाहते थे.
Buddhism is the best operating system for you.
क्योंकि बौद्ध धर्म आपके लिए बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है.
It just makes me think one good thing about Buddhism, the Buddhist operating system is very good to get rid of viruses.
बुद्धिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की और एक अच्छी बात है कि वायरस से बहुत जल्दी हम बाहर निकल जाते हैं.
With Buddhist operating system, you don't need virus checker.
क्योंकि बुद्धिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एंटीवायरस नहीं लगता.
Buddhist operating system immediately knows unskillful, skillful.
क्योंकि बुद्धिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह तुरंत जानता है कि कुशल क्या है और कुशल क्या है.
True, false.
सच क्या है गलत क्या है.
Get rid of the unskillful, get rid of the false.
वो तुरंत आपको बताता है कि अकुशलता और झूठ से बाहर निकल जाइए.
So yes, Baba Sahib chose the Buddha Dhamma for these reasons.
तो इन कारणों के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को चुना।
But we need to explore a little more deeply the connection between Buddhism and science.
लेकिन हमें और गहराई में जाकर खोजना है कि बौद्ध धर्म और विज्ञान में संबंध क्या है।
And I want to try to give you a view of the Buddha Dhamma that is continuous with science.
तो मैं आपको यह दृष्टिकोण देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बौद्ध धर्म और विज्ञान में कैसी करीबी है।
How can we understand the Buddhist path in terms that relate to scientific understanding?
कौन से मार्ग से हम जाए जो हमारी समझ को और गहरा करे बौद्ध धर्म और विज्ञान के बारे में।
How can we relate the findings of the Dhamma to science?
जो धम्म की हासिलियत है वह विज्ञान के साथ कैसे मिलाप या मेलजोल खाती है उसे हमें देखना है।
How can we relate this Dhamma life to what we know about the universe around us?
कैसे हम धम्म जीवन को जाने जो हमारे इर्द गिर्द जो विश्व है उसको वह जान पाए।
You know, for instance, we're here studying Baba Saheb's thought and the Buddha Dhamma.
अब मान लीजिए कि हम सब लोग यहाँ हैं बौद्ध धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा साहब के विचारों का अभ्यास कर रहे हैं।
Just a few hundred yards away from us, there are some monkeys.
अब यहाँ से 100 मीटर की दूरी में आप जाएंगे तो वहाँ कुछ बंदर हैं।
And they're sitting around together.
और वो आपस में बैठते हैं।
They're doing what monkeys do.
Monkeys are doing what monkeys are doing.
Well, yeah, monkeys are doing what monkeys do. I hope you're not doing what monkeys
do. तो वो साथ में बैठते हैं और बंदर को जो या बंदरों को जो करना है वो करते हैं।
They're looking for fleas.
तो वो जो मक्खियाँ या जो भी खाते हैं उसको वो ढूंढते हैं।
They're picking leaves, huh?
या वो पेड़ के जो पत्ते हैं उनको खाते हैं।
And there's all sorts of conflict and tension amongst them in their tribe.
तो उनकी अपनी जो जातियाँ उपजातियाँ होगी उसमें थोड़ा सा वाद होता है।
You get the big male.
वहाँ पे एक बड़ा बंदर मिलता है।
And you get a little male.
और उसमें एक छोटा बंदर होता है।
So the big male, when the little male comes too close, the big male goes.
तो जब बड़ा बंदर के पास छोटा बंदर आता है, तो बड़ा बंदर ऐसे देखता है।
So we're all here doing this.
तो आप, we all need this.
No. We are all here studying Baba Saheb and the Dhamma. You kidding?
तो हम सब लोग यहाँ हैं बाबा साहब और धम्म को सीखने के लिए।
They're doing monkey business.
तो वो तो बंदर अपना काम वहाँ कर रहे हैं।
What's the connection between us and them?
तो उनमें और हम में संबंध क्या है?
Has what they're doing got any connection with what we're doing?
तो जो वो कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं इसमें कोई संबंध है क्या?
Is there some way we can look at them and look at us that brings them together?
क्या ऐसी कोई बात है जो हम में है और उनमें है जो समान है या इकट्ठा लाती है?
Is it just that we are monkeys with clothes on?
या ऐसी बात है कि हम भी बंदर हैं कपड़े पहनकर?
Sometimes I think we are brothers and sisters, I'm afraid.
We are monkey and we.
Huh?
Who are brothers?
Sometimes we are monkeys with clothes on.
Yeah. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम बंदरों के ही भाई बहन हैं कपड़े पहनकर।
Sometimes when we quarrel, when we fight, we're just like monkeys.
तो जब हम झगड़े करते हैं या हम में वाद विवाद करते हैं तो हम बंदरों जैसे हो जाते हैं।
It's really interesting watching them. They're so like us.
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है उनको देखना, वो बिल्कुल हमारे जैसे है।
So, but what is the difference?
तो फिर हम में और उनमें अंतर क्या है?
What is the similarity?
और क्या हम में समानता है?
How can we understand their life and our life in one single vision?
तो एक दृष्टि में उनका जीवन और हमारा जीवन हम कैसे समझ सकते हैं?
You know, they're definitely our relatives.
अब यह निश्चित बात है कि वो हमारे रिश्तेदार हैं।
They're quite close relatives, actually.
और हमारे करीबी रिश्तेदार हैं।
They're closer relatives than the squirrels.
तो वो हमारे squirrels,
yeah.
वो निश्चित रूप से हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। मान लीजिए खरुतेला काय म्हणतो आपण गिलहरी गिलहरी की तुलना में
actually all living things are our relatives
तो यहां जो कोई भी सजीव है वो सब हमारे एक दृष्टिकोण से रिश्तेदार है
those monkeys are our first cousins
तो तो जो बंदर जो है वो हमारे पहले रिश्तेदार है
maybe the snake is A distant, more distant cousin.
या जो सांप है वो दूर के रिश्तेदार है.
Maybe from some different village.
शायद बहुत दूसरे गांव के.
But even mosquitoes, there are relatives.
और जो मच्छर है वो भी हमारे रिश्तेदार हैं.
So think about that next time you.
तो जब दूसरी बार आप उनको मारेंगे तो उसके बारे में सोचिए.
So yes, these monkeys are our relatives.
तो उस दृष्टिकोण से बंदर हमारे रिश्तेदार हैं।
So how do we understand their relationship to us?
तो कैसे हम इनका जो संबंध है यह हम समझते हैं?
How do we understand our interest in the Dhamma and their lives?
तो कैसे हम समझते हैं हमारी धम्म में रुचि है और उनके जीवन के बारे में?
Well, the best way I think that we can understand the relationship between ourselves and the life in nature around us is through the idea of evolution.
तो सबसे अच्छा उदाहरण इसके लिए यह है कि उनके जीवन और हमारे जीवन या निसर्ग और हमारे जीवन के बारे में अगर हम संबंध देखें तो हम उत्क्रांति की जो कल्पना है उसके बारे में सोचे.
All familiar with the notion of utkranti, evolution.
Yeah.
Yes, everybody's familiar with this idea. Yeah. You, of course, those of you who are biologists or botanists, you'll know it very well.
तो जिसने वनस्पति शास्त्र या जीव शास्त्र सीखा हो, उन लोगों को यह पता होगा.
But probably everybody these days knows of the idea of evolution.
लेकिन आजकल सभी को मोटे तौर पर यह पता है कि उत्क्रांति की कल्पना क्या है.
Of course, it's a very old idea.
निश्चित रूप से यह बहुत ही प्राचीन कल्पना है.
In a way, the general idea of evolution you can find in the Buddhist scriptures.
अब सर्वसामान्य जो उत्क्रांति की संकल्पना है यह हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती है.
We'll talk about that more later.
अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे.
Some of the Greek philosophers had the idea of evolution.
तो जो कोई भी ग्रीक के दर्शनार्थी थे या फिलोसोफर्स थे उनको भी उत्क्रांति के बारे में पता था.
But it was especially in the 19th century in England that Charles Darwin applied the idea of evolution to botany.
लेकिन 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने पहली बार इस सिद्धांत को लाया.
And to biology in general.
और जीवशास्त्र सामान्य रूप से.
And he wrote a book called The Origin of Species.
और उन्होंने जीवों की उत्क्रांति इसके ऊपर उत्पत्ति इसके ऊपर किताब लिखी.
It's one of the most important books of our modern times.
और हमारे आधुनिक समय में यह बहुत महत्वपूर्ण किताब है.
Applies scientific thinking to the way in which species come about.
तो वह इस वैज्ञानिक विचार को बढ़ावा देते हैं कि कैसे हम सब लोग जीवन में आए.
There's a development which leads to a particular species.
तो वहाँ पे एक विकास प्रक्रिया थी जो विशिष्ट जीवों को बना रही है.
And that development is based on what he calls natural selection.
और वह पद्धति है उसको वह कहते हैं कि नैसर्गिक चुनाव.
So a particular plant or animal has certain characteristics.
तो कुछ प्राणी या कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अपने लक्षण होते हैं.
So for instance, in the forest here we have lots of teak trees.
तो जंगल में यहाँ बहुत सागवन के पेड़ हैं.
And they have these very big leaves.
और उनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े हैं.
And this is a very dry climate.
और यह बहुत सूखा वातावरण है मौसम है.
A very hot climate in the summer, very hot.
और गर्मियों में यह बहुत गर्म हो जाता है.
There's very little rainfall here.
और बहुत कम बारिश वर्षा यहाँ होती है.
So those big leaves enable the teak tree to get the nourishment that it needs both from the sun and from moisture.
तो यह जो बड़े पत्ते होते हैं उस पेड़ के यह इसमें सक्षम होते हैं कि ऐसे मौसम में सूरज से या जमीन से जो चीजें चाहिए वो चुरा ले.
But when the sun comes, when the heat of the summer comes, those leaves can't help the tree.
लेकिन जब गर्मी आती है तो यह जो बड़े पत्ते हैं यह पेड़ को मदद नहीं कर पाते.
Because they're big and they accumulate heat.
क्योंकि वो बहुत बड़े पत्ते होते हैं और उनमें काफी गर्मी पड़ती है.
So the tree drops the leaves in the summer.
तो गर्मियों में क्या होता है कि यह जो बड़े पत्ते हैं वह अपने यानी सॉरी जो पेड़ है वो बड़े पत्तों को छोड़ देता है.
So that tree, the teak tree, has adapted to this climate.
तो यह जो पेड़ है इस मौसम के अनुकूल अपने आदतों को उसने बढ़ाया है.
If we took that tree to England, what would happen?
अगर इस पेड़ को हम इंग्लैंड ले जाते हैं तो क्या होगा?
It would just die.
क्योंकि यह मर जाएगा.
We find this with the Bodhi tree, the people tree.
तो बोधि वृक्ष है. बोधि वृक्ष के बारे में हमने यह देखा.
We all want Bodhi trees because the Buddha sat under one.
कि हम सब लोगों को बोधि वृक्ष चाहिए होता है क्योंकि उसके तले बुद्ध बैठे.
But several of my friends have brought a little seedling of a Bodhi tree back to England.
बहुत मेरे दोस्तों ने उसका जो बीज है वो इंग्लैंड ले आए.
But whatever you do, eventually it dies.
जो कुछ भी आप कीजिए उसके साथ वो मर जाता है.
Because it's not adapted to that climate.
क्योंकि वह उस मौसम के अनुकूल घड़ा नहीं है.
Maybe one day you might get a Bodhi tree that could survive.
एक दिन ऐसा हो सकता है कि वह बोधि वृक्ष आप पा सकते हैं जो वहां जिंदा रहे.
It would begin to change its character.
वह अपने लक्षणों को बदलेगा.
And it will become an English Bodhi tree.
और वो English Bodhi tree होगा.
We really hope that happens so that an English Buddha can sit there.
हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसा English Bodhi वृक्ष आए ताकि वह English बुद्ध बैठे.
So the trees adapt to their climate.
तो जो यानी पेड़ है वह उस मौसम के अनुकूल होते हैं.
And the more an animal or a plant can adapt to its climate, the more successful it is.
तो जितने अच्छी तरह को पेड़ मौसम को आत्मसात करता है उतना ही सशक्त वह पेड़ होता है.
So Charles Darwin argued and proved that all the species that we know have evolved by adapting to their environment.
तो चार्ल्स डार्विन ने यह खोजा कि हर सजीव जो है ऐसे वातावरण के बदलाव को उसने स्वीकारा और उत्क्रांतित हुआ है.
adapt by natural selection.
जैसे मौसम का जो अपना चुनाव या उसकी अनुकूल परिस्थिति होती है उसके हिसाब से वो बढ़ता है.
Teak trees that kept their leaves with us in the summer wouldn't survive.
अगर यह जो पेड़ है जो सागवन का उसने अगर बड़े पत्ते अपने साथ रखे तो वह स्वयं मर जाएगा.
So they die out.
इसलिए वो उन्हें छोड़ देता है.
Those that lose their leaves, they survive.
और जो भी पेड़ अपने बड़े पत्तों को त्याग देते हैं वो जिंदा रहते हैं.
And they produce seeds and seedlings.
और इसीलिए फिर वो अपना जो बीज है उसको वो बना पाते हैं.
So Charles Darwin argued that this is how we have come about.
तो डार्विन जो है यह इसी बात को तथ्य को रखते हैं कि ऐसे ही हम आए हैं.
I'm afraid I'm no biologist.
अब मैं जीव शास्त्रज्ञ नहीं हूँ.
I studied philosophy, which means you don't know anything.
मैंने दर्शन शास्त्र को पढ़ा इसका अर्थ यह होता है कि आप कुछ नहीं जानते.
He's going to be doing a PhD in philosophy, so he's learning not to know anything.
मैं दर्शन शास्त्र में PhD कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कुछ नहीं जानूंगा.
I've just been reading some of the Greek philosopher Socrates.
मैं अभी जो ग्रीक फिलोसोफर है सोक्रेटिस उनको पढ़ रहा था.
And he lived about the same time as the Buddha.
जब बुद्ध का काल था मोटे तौर पे उनका वही काल था.
And one day a god through an oracle said that Socrates was the wisest man in Greece.
तो God came and said this. तो एक दिन भगवान आए या देव आया और उन्होंने यह कहा कि सोक्रेटिस जो है यह पूरे ग्रीस में सबसे होशियार व्यक्ति है.
So Socrates thought, well, if the God says I'm the wisest man, I must be.
तो सोक्रेटिस ने यह सोचा अगर भगवान ही कह रहा है कि मैं सबसे होशियार आदमी हूँ तो शायद मैं हूँ.
But why am I the wisest? I don't think I am.
लेकिन मैं सबसे होशियार क्यों मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूँ.
So he went to lots of wise people.
तो वो बहुत सारे बुद्धिमान लोगों से मिले.
And what he found was that they all thought they were wise, but really they didn't know anything.
तो क्या उन्होंने देखा कि सब बुद्धिमान लोग यह मानकर या सोचकर चल रहे हैं कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं, लेकिन वो कुछ नहीं जानते.
So he thought, the reason why I'm the wisest man is because I know I don't know anything.
तो मैं सबसे बुद्धिमान शायद इसलिए हूं कि मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता.
They all think they know something, but I know I don't know anything.
वो सब लोग सोचते हैं कि मैं यह जानता हूं, वह जानता हूं, लेकिन मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता.
So he'll get his PhD when he knows he doesn't know anything.
तो मुझे शायद मेरी पीएचडी तब मिलेगी जब मैं जानूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता.
At the moment he still thinks he knows a little bit.
अभी भी मैं यह सोचता हूं कि मैं कुछ जानता हूं.
Anyway, my point was I don't know anything about biology.
तो इसका अर्थ यह है कि मैं जीव शास्त्र के बारे में मैं कुछ नहीं जानता.
So doctor, please correct me if I'm wrong.
तो यहां जो कुछ भी डॉक्टर होंगे मुझे सही कीजिए अगर मैं गलत.
I'm sure there's some biologists here.
मुझे पूरा भरोसा है कि यहां कोई बायोलॉजिस्ट.
Anyway, broadly the picture that emerges from Darwin's research is there's a long evolution.
तो डार्विन का जो रिसर्च था उससे यह एक बहुत बड़ी उत्क्रांति की प्रक्रिया बाहर आई.
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द वार्म सीज.
सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास वार्म
द वार्म सी सागर.
हाँ, एक गरम या
महासागर.
महासागर गरम महासागर था, उष्ण महासागर था.
या एज द अर्थ फॉर्म्स दीज वार्म सीज डेवलप्ड.
तो पृथ्वी ने इस गरम सागर की कल्पना की या उत्क्रांति की.
And then in those warm seas you got various chemicals.
और उस गर्म समुद्र में कुछ केमिकल्स थे, कुछ रसायन थे.
Some of those chemicals combined together to form proteins and so forth.
और कुछ रसायन जो है वह कुछ प्रोटीन को बना सकते हैं, कुछ चीजों को बना सकते हैं.
You could say purely by chance or purely by circumstance.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि परिस्थिति से वह होता हो या संधि से शायद ऐसे चीजें होती हो.
Then some of those chemical compounds gathered together and formed a one-celled organism, an amoeba.
तो ऐसे कुछ रसायन द्रव्य है जो आपस में मिलकर एक सेल का कोई सजीव बना सकते हैं, शायद जिसे हम अमीबा कहते हैं.
I'm just checking that Dr. Pranali is nodding. Yeah.
तो मैं देख रहा हूँ कि प्रणाली शायद देख रही है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ.
So these amoeba, they gradually developed 2 cells, 3 cells and more.
तो अमीबा ने धीरे धीरे एक सेल, दो सेल, तीन पेशियां ऐसे बनाई.
And gradually you had fish and other sea creatures.
और फिर धीरे धीरे अन्य समुद्र जीव उनकी उत्पत्ति हुई.
And then one day, I don't know how, but one of those fish found its way onto the land.
तो एक दिन पता नहीं कैसे, लेकिन उस समुद्र से एक जो मछली जो था वो कैसी तो भी जमीन पर आई.
And the first of these creatures lived partly in the water, partly on the land.
तो वह जो जीव था कभी पानी में कभी जमीन में रहता था.
You got some sort of reptiles that crept up onto land.
तो ऐसे कोई जो चलने वाले या तैरने वाले नहीं, रेंगने वाले कुछ जीव जो है इस प्रकार से निर्माण हुए.
Then little mammals developed.
और धीरे धीरे जो स्तन प्राणी जिसे हम कहते हैं उनकी निर्मिति हुई.
And they say that our first ancestor in the mammal line was probably like a mouse.
और वो ऐसा कहते हैं कि हमारे पूरी जाति के उत्पत्ति में या उत्क्रांति में सबसे पहला स्तन प्राणी जो था वह चूहा था.
So when you see a mouse next, say hello cousin.
वो चूहे के जैसा था, तो जब कभी भी आप किसी चूहे के देखेंगे तो उसको कहिए चाचा जी नमस्ते.
काका जी.
काका जी.
Yeah, uncle. And then, you know, that developed eventually into primates, monkey-like creatures.
हाँ, और धीरे धीरे फिर वह बड़े हुए या उत्क्रांतित हुए जैसे बंदरों जैसे थोड़े थोड़े वह दिखते होंगे.
And then you gradually get very early human beings.
और जो क्या कहते हैं कि आदि मानव, पहले के जो मानव थे उस तरीके के प्राणी निर्मित हुए.
Australopithecus. Australopithecus, one of the early men, yeah.
तो जो सबसे पहले जो मानव दिखते थे उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं.
And gradually something more like a human being emerges.
और बहुत ही सालों बाद धीरे-धीरे उस प्रक्रिया में इंसानों जैसे दिखने वाले एनिमल आए ऐसे.
The first human beings look a bit more like that. He does a better monkey interpretation than me. I think he must be closer. So, this is what emerges from Darwin's analysis.
तो डार्विन ने जो विश्लेषण किया इस उत्पत्ति का यह सब बातें उससे निकल कर आई.
And we have the evidence.
और उसके हासिलित या प्रूफ जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास है.
You can find skulls of ancient pre-human human beings.
तो जो बहुत ही प्राचीन काल के जो खोपड़िया जो है जिसे स्कल हम कहते हैं वह हमारे पास है यानी इंसानों के पास.
And you can see they're not quite monkeys and they're not quite humans.
तो वो पूरी तरह बंदरों के जैसे नहीं है और इंसानों के जैसे भी नहीं है.
So you can see in the fossil record, you can see the evolution that takes place.
तो वो जो जीवाश्म जो है उनमें ऐसे जिसे हम फॉसिल कहते हैं उन फॉसिल के रिकॉर्ड्स में हमें यह मिलता है.
As mutations took place, those that were useful led to success.
तो म्यूटेशन यानी जो हिंदी में क्या कहते हैं म्यूटेशन को तुरंत कुछ ऐसे पद्धतियां होती है जिससे वह बनता है उस प्रक्रिया में. What happened?
Then they were successful.
तो ऐसे बदलाव की प्रक्रिया में वह ऐसे बने.
The first creature whose hands could close and hold something, they were more successful than those that couldn't.
तो ऐसे बदलाव में जो पहला हाथ जो निर्मित हुआ जो किसी चीज को पकड़ सकता था वो ज्यादा काबिलियत में थे पकड़ने के जो पहले मानव थे उनकी तुलना में.
So they survived and they bred.
तो इसीलिए वह जिंदा रह पाए.
And those of their descendants who made good adaptations, they survived and developed.
तो इस तरीके से जो लोग उस परिस्थिति में पनप पाए वह जिंदा रहे और आगे बढ़े.
That is what evolution shows.
यह उत्क्रांति हमें बताती है.
We evolved from earlier creatures.
तो हमारी जो उत्पत्ति हुई है ऐसे पहले कुछ सजीवों से हुई है.
And that's why the monkeys are our relatives.
इसीलिए इस रिश्तेदारी में वो हमारे रिश्तेदार हैं.
They're so close to us.
क्योंकि वो हमारे बहुत करीब हैं.
Even their social life is like ours.
क्योंकि उनका सामाजिक जीवन भी एक दृष्टिकोण से हमारे जैसा है.
Just I staying in the hut just here.
तो ये जो कॉटेज है या हट है झोपड़ी है यहाँ पे मैं रहता हूँ.
And sometimes I've watched the monkeys out the back of that hut.
और उसके पीछे कभी जो बंदर आते हैं मैं उनको देखता हूँ.
And you see their behavior is so like ours.
और उनका जो बर्ताव होता है वो बिल्कुल हमारे जैसा होता है.
Sometimes I think they even have a caste system.
कभी कभी मुझे यह भी लगता है कि उनमें जाति व्यवस्था है.
इज माई ट्राइब अपने लोग ना है. So they're very close to us really.
तो इस दृष्टिकोण से वह काफी हमारे करीब लगते हैं.
So evolution shows us that we are in a sense related to all other living things.
तो उत्क्रांति हमें यह दर्शाती है किसी ना किसी तरीके से हम इन सजीवों के संबंध में अपना ताल्लुक रखते हैं.
Our ancestor is the same, our grandparents are the same.
तो हमारे जो पूर्वज है दादाजी परदादाजी परदादा के परदादाजी हमारे जैसे थे.
What's grandmother?
परदादी.
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 Yeah, परदादी and दादा.
तो हमारे जो परदादा और परदादियां जो थी वह समान ही थी.
So this is what evolution shows us.
तो यह उत्क्रांति हमें बताती है.
We are the product of that long process of evolution.
तो हम उस बड़ी प्रक्रिया के हासिलियत है प्रोडक्ट है.
So in a sense you could say that evolution is simply about adaptation to environment.
तो एक दृष्टिकोण से हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्क्रांति जो है यह परिस्थिति के साथ अनुकूलता प्रस्थापित करना है.
You could say the most successful species is the one that manages to survive and breed most fully.
तो हम यह कह सकते हैं कि सबसे कामयाब सजीव वही है जो परिस्थितियों के साथ जिंदा रहना सीखे.
I think if you said this though, what you'd say is that the rat is the best creature.
अगर आप इस सिद्धांत को रखते हैं तो सबसे अच्छा सजीव उसमें चूहा है.
Because the chua, what's chua? Chuha. What is it in Marathi?
Undir,
yeah. The undir, the chuha, is very, very successful. It can live anywhere.
क्योंकि उंदीर या चूहा जो है वो कहीं पे भी रह सकता है.
But I don't think we're less good than chuha.
Less good means we are like equal to the chua.
Huh?
That's the meaning, right?
We start with that. Yeah.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम चूहे से कुछ खराब नहीं है.
You know, is Maitreevir Nagarjun not as good as a chua?
अब मैत्रीवीर नागार्जुन ये कोई चूहे से खराब नहीं है.
Personally, I think he's better than a chua.
व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये चूहे से बहुत अच्छा है.
Mostly.
मोटे मोटे तौर पर.
No, he's always better than a chuha.
Yeah, हमेशा ही चूहे से बहुत अच्छा है.
But why is he better?
लेकिन क्यों यह अच्छा है?
What's the difference between Maitreevir Nagarjun and chuha?
तो चूहे में और मैत्रीवीर नागार्जुन में क्या अंतर है?
What's the difference between Maitreevir Nagarjun and bandar?
तो बंदर में और मैत्रीवीर नागार्जुन में क्या फर्क है?
What makes him in a sense better?
एक दृष्टिकोण से हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या इसको उससे अच्छा बनाता है?
Is evolution just about whether you can survive or not?
क्या उत्क्रांति का अर्थ यही है कि बस आप जिंदा रह जाएं?
Or is there something more? Is there some value in evolution?
या क्या उत्क्रांति के कुछ मूल्य है?
Is there a development?
क्या उसमें कुछ विकास की प्रक्रियाएं हैं?
Well, this is where the Buddha Dhamma starts to come in.
अब यहीं से बौद्ध धम्म की शुरुआत होती है.
What the Buddha Dhamma says is that, or what it implies is that a human being is special.
क्या बौद्ध धम्म हमें बताता है या इसका द्योतक है कि इंसान जो है वे विशेष है.
And you could say in a single word, a human being is special because a human being can think I.
क्योंकि मानव विशेष इसलिए है क्योंकि वो स्व या मैं इसके बारे में सोच सकता है.
That means a human being is capable of choice.
इसका अर्थ यह हुआ कि मानव जो है वह अपने जो मौके है, choices है, इसके बारे में सोच सकता है.
And we'll see that that means a human being is capable of moral choice.
इसका अर्थ यह भी है कि मानव जो है वह नैतिक चुनाव करने के लिए सक्षम है.
A human being is capable of dhamma development.
और मानव जो है वह धम्म विकास के लिए सक्षम है.
But what is special about us is that we can identify ourselves.
लेकिन महत्वपूर्ण या विशेष बात यह है कि हम अपने आप के साथ अपनी पहचान कर सकते हैं.
An animal can't do that, or can only do it to a very small extent.
और प्राणी जो है यह बहुत कम मात्रा में इसे कर पाते हैं.
You know, you put a mirror in front of a dog.
अब क्या होता है कि कुत्ते के आगे अगर आप आईना रखते हैं?
And you know what happens?
Eh? और क्या होता है?
The dog.
तो जो कुत्ता है वो ऐसे करता है.
मराठी कुत्ते?
मराठी कुत्ता.
I remember once I did a retreat here. Actually, it was at Bhaja in Pune.
तो मुझे अभी भी याद है कि भाजा में मैंने पुणे में एक शिविर लिया था.
And in the monsoon, there's lots and lots of frogs.
और बारिश जब होती है तो बहुत सारे मेंढक आते हैं.
And I remember seeing a frog coming up to the glass on the window.
और जो मेंढक जो है वह यानी दीवार का जो शीशा है उसके पास आया.
And the frog wanted to come in.
और जो मेंढक जो है वह अंदर आने की कोशिश कर रहा था.
And it just kept jumping.
और वह जब अंदर आने के लिए उस क्या जो ग्लास है शीशा है उस पे छलांग मार रहा था.
And of course, every time it jumped, it fell down.
जब कभी भी उसने छलांग मारी वो पीछे गिरता था.
It couldn't work out what was happening.
तो अब वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है.
It was as if it just thought, I want to go.
इसका अर्थ यह है उसको समझता था या शायद यह मान के चलता हूं कि मैं अंदर जा सकता हूं.
So we human beings were able to identify ourselves, were able to think about our environment.
तो इंसान इस तरीके से हमारा जो पर्यावरण है जो हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है उसके बारे में हम सोच पाते हैं.
We're able to think about the past.
और हम अपने इतिहास के बारे में सोच पाते हैं.
I did this.
मैंने ये किया मैंने वह किया.
We're even able to say, well, Baba Saheb burned the Manusmriti in 1927.
आप यह कहने में सक्षम है या कह पाते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया 1927 में.
My parents, my grandparents converted because of Baba Saheb.
मेरे जो दादा परदादा थे जो थे वह उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली.
We're able to think about ourselves in the past.
और हम अपने बारे में सोच सकते हैं भूतकाल के परिपेक्ष में.
And we're able to think about ourselves in the future.
और हम हमारे भविष्य के बारे में सोच सकते हैं.
I imagine most of you are students.
मैं इसकी कल्पना या मान के चल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग
छात्र हैं. So you're thinking about getting a certain exam.
तो आप इसके बारे में सोचते हैं कि मुझे किसी एग्जाम में या इम्तिहान में पास होना है.
Maybe you have a bigger plan in the future. You want to be IAS officer or doctor or whatever, yeah?
तो आपके सामने बहुत बड़े ऐसे लक्ष्य होंगे उद्देश्य होंगे मुझे IAS officer बनना है या डॉक्टर बनना है.
I hope you have big plans.
मुझे आशा है कि आपके प्लान बहुत बड़े हैं.
So that's because we're human and can say I.
इसीलिए इंसान जो है वह स्व या मैं को बोल सकता है.
That's what's different about us from those monkeys.
तो यह हम में और बंदरों में फर्क है.
Intelligence comes in.
बुद्धिमत्ता जो है वह आती है.
Not just functioning on instinct.
वह केवल अपने इंस्टिंक्ट जो कहते हैं उत्तेजना इसके ऊपर काम नहीं करते.
So this is our past, our evolutionary past.
तो यह हमारे उत्क्रांति का इतिहास है या गतकाल है.
Evolution has brought us to the point at which we are self-conscious.
तो इस उत्क्रांति ने हमें उस मुकाम पर लाके छोड़ा है कि हम अपने स्वचेतना या स्वचेतन हैं.
What about the future?
अब भविष्य का क्या?
Does evolution stop here?
क्या उत्क्रांति यहीं पे आके रुक गई है?
Am I the greatest thing in evolution?
क्या मैं उत्क्रांति की सबसे अच्छी हासिलियत हूँ?
Not just me, you as well.
यानी इंसान या आप सब लोग या मानव.
Are you the king or queen of creation?
क्या हम इस पूरे बनने की प्रक्रिया के राजा और रानियां हैं?
Is this the end?
क्या यह अंत है?
Does it stop with us?
क्या यह बस हम तक आके रुक गई है?
Well, we'll look at that tomorrow.
अब इसको हम खोजेंगे कल.
We'll look at what the future of evolution could be.
अब हम यह देखेंगे कि इस उत्क्रांति का भविष्य क्या होगा?
Has evolution stopped?
क्या उत्क्रांति रुक गई है?
If it goes on from here, how does it go on?
अगर यह इससे आगे जाएगी तो कैसे जाएगी?
Does it have anything to do with us?
क्या इसका कुछ संबंध हमसे है?
Or will it just be our children? You know, they have three arms and two heads.
या हमारे ऐसे बच्चे होंगे आने वाले दिनों में जिसके तीन हाथ और दो सर होंगे?
You know, new adaptations of body.
क्या हमारे कुछ और अनुकूलताएं पर्यावरण की होगी?
Or is there another step in evolution that we can take?
या कोई ऐसा अगला पड़ाव या कदम है उत्क्रांति का जो हम ले सकते हैं?
So this we will begin to explore tomorrow.
तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे.
We'll try to see the science of what you could call higher evolution.
तो विज्ञान जिसे हम कहते हैं इसको हम उच्च उत्क्रांति कह सकते हैं.
We've been thinking about the science of lower evolution.
इस अभी जो हमने सोचा यह निम्न उत्क्रांति का विज्ञान था.
Lower evolution has brought us here.
तो जो निम्न उत्क्रांति जो थी उसने हमें इस मुकाम पर लाकर छोड़ा.
Where next?
अगला पड़ाव कदम क्या?
Up. What was it? अगला
कदम या पड़ाव. Miss Faiz.
Okay, that. नमो बुद्धाय. जय भीम.